ओम शांति। लंबे समय के बाद बाबा के घर में आने को मिला है ना? अच्छा लग रहा है? गोल्डन चांस मिला है। और लॉकडाउन के दौरान स्वउन्नति का भी बहुत सुंदर मौका मिला, मिला ना? डरे तो नहीं? हाँ, कोरोना से डर तो नहीं है? सच में माताएं, भाई चिंता तो नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा तो हुआ ना? हाँ, क्योंकि नया ही दृश्य पूरे विश्व के सामने आ गया। पैसे वाले हैं, पढ़े हुए हैं, या कोई भी पोस्ट पोजीशन वाले हैं, अनपढ़ है, गरीब है, शहर है, गांव है ना, हर कोई एक लाइन में आ गए। हर एक के सामने ये परिस्थिति आ गई। कितना भी धन हो, जायदाद हो, अथॉरिटी हो, पोस्ट पोजीशन हो, पर हर कोई उनके शिकार बन गए। और उस समय महसूस हुआ कि कोई धन दौलत, सगे संबंधी कोई काम में नहीं आ सकते है ना, कुछ भी काम में नहीं आ सकता। दो चीज उस समय काम आई, एक तो फिजिकल इम्यूनिटी, जो शारीरिक रूप से जितने शक्तिशाली स्वस्थ है ना, वो उस बीमारी का सामना कर सके। और हम जीवन भर स्वास्थ्य का तो ध्यान ही नहीं रखते, अपने कामकाज में, पारिवारिक बातों में, नौकरी धंधों में, तेरी मेरी में हम उसी में लगे रहे है ना, शरीर के लिए समय नहीं देते। पर अब सबको समझ में आ गया कि शरीर ठीक रहेगा तो सब कुछ रहेगा। तो कुछ कर रहे हैं, खान पान पर ध्यान देना, दिनचर्या पर ध्यान देना, नींद आराम पर ध्यान देना और खान पान पर ध्यान देना, इसमें से क्या सीख ली सबने? ये बात सीखी कि वापस उसी में लग गए जो खुल गया तो? हाँ, करना है ना, कुछ ना कुछ प्राणायाम, एक्सरसाइज, खान पान भी स्वस्थता के हिसाब। हम तो अपने स्वाद के हिसाब से ही खाते रहे, लेकिन पौष्टिक खाना। बाबा ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है ना, अन्न शुद्धि, तो हम सबकी तो वो धारणा है ही खान पान के बारे में। तो बाबा का शुक्रिया माना आप सबने? हाँ, माताएं नहीं बोल रही है? हाँ माताएं, बाबा का शुक्रिया किया भाइयों ने कि बाबा आपने हमें ऐसा ज्ञान योग सिखाया, हमारी धारणा पहले से है। रोज स्नान करते हैं, स्वच्छता रखते हैं, रोज धुले हुए कपड़े पहनते हैं, अमृत वेला उठते हैं, तो ये सब बहुत अच्छी लाइफस्टाइल बाबा ने सिखाई। तो बाबा का शुक्रिया, हमें मुश्किल नहीं लगा ना? जो व्यसनी होते हैं उनको तो कितना मुश्किल हुआ पता है ना? देखा होगा ना, कि कैसे भी करके व्यसन की चीजें पाने का कितना प्रयास किया, और जब थोड़ा सा खुला तो लोग तो टूट पड़े। एक दुकान वाले को तो वही टाइम पूरा हो गया तो नहीं मिलेगा, तो उससे मारामारी की, लड़ाई झगड़े किए, क्योंकि आदत ही थी। और हम बाबा के बच्चों को तो ऐसी कोई गंदी आदत नहीं, शुद्ध भोजन खाना है तो हम औरों के घर खाते ही नहीं थे, तो अपने आप सेफ्टी हो गई ना, कहाँ कैसा, कैसे बर्तनों में, कैसे गंदे किचन में, होटलों में कैसा कैसा भोजन मिलता है। पर बाबा के हम बने हैं तो हमारी तो ऑलरेडी सेफ्टी हो गई। तो और रियलाइज हुआ कि देखो बाबा तो त्रिकालदर्शी है, भविष्य को भी जानते हैं। पहले से बाबा ने हमें ये धारणाएं सिखाई तो हमें कितना फायदा हो गया। पहले मुश्किल लगता था, संबंधियों के घर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, अभी अपने आप महसूस हुआ ना कि ये सही बाबा ने हमें सिखाया, लोग भी सीखे इन दिनों में। कहीं भी जाना, खाना लेना, वो तो बात ही नहीं ना, जाना ही नहीं था। लौकिक में तो जाना ही पड़े, फलाने प्रसंग में तो जाना ही पड़े, शादी में तो जाना ही पड़े, मुरादी बर्बादी सब में जाना ही पड़े। अब क्या हुआ, नहीं छोड़ते थे ना सभी, अब क्या हुआ, 8 मास क्या हुआ, अपने आप सब चला, दुनिया को भी पता चल गया ये तो सब फालतू है, गए फिर क्या करना है। तो कितना बाबा ने और ड्रामा ने हम सबको सिखाया, आपस में कैसे मिलना, कैसे बात करना, ये सब मैनर बाबा ने, ड्रामा ने सिखाए, ये ड्रामा ने सिखाए। भाई उचित दूरी रख के सभ्यता से मिलना बोलना, कहीं तो मुख से थूक उड़ाते बोलते हैं, कहीं कभी भी कहीं किसी के सामने उबासी खाते हैं, छींकते हैं ऐसे जैसे कोई मुख पर रुमाल भी नहीं रखते, तो ये मैनर सिखाए ना ड्रामा ने, सीखना है। ऐसे नहीं कि अभी खुला हो गया तो वापस वही हमारी चाल हो जाए, हम बाबा से नहीं सीखे ना इसलिए ड्रामा ने सिखाया। ड्रामा के आगे तो कुछ चला ही नहीं ना, बाबा तो प्यार का सागर, इसलिए कुछ मानते थे कुछ नहीं मानते थे, पर ड्रामा के आगे किसी की चली, अंदर बंद होना ही पड़ा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को शिक्षक बनाओ, बाबा से सीखो, माना ज्ञान और योग से हम सीखे जो बाबा देते। ड्रामा सिखाएगा फिर तो कुछ नहीं चलेगा, फिर आप कितना भी कुड़ते रहो, कोसते रहो, नाराज रहो, भय में रहो, चिंता में रहो, कुछ नहीं चलेगा। तो ये सब सबक हमें सीखने, एक दूसरे से दूरी रखना। बाबा ने तो कितना ऊंचा सिखाया, एक दूसरे से क्या दूरी रखना, उससे भी प्लस खुद के देह से ही न्यारा रहना, खुद के देह से ही हमें तो न्यारा रहना। तो देहधारियों के मिलन में तो हम दूर ही रहते हैं, कभी स्पर्श नहीं करते हैं, हमारा रूहानियत का मार्ग है ना, हम योग मार्ग के राही है, हम कोई लौकिक भौतिक नहीं है, हम तो आध्यात्मिक है, अलौकिक है, तो दैवी मैनर्स बाबा सिखलाते हैं, उन दैवी मैनर्स के साथ हमें चलना है, न सिर्फ दूर से मिलना, हमें तो सबके वाइब्रेशंस में बिहेवियर मैनर्स उन सब से भी प्रभावित नहीं होना है, हमें तो जो सही है वो ही जो बाबा हमें सिखा रहे हैं वो अप्लाई करना है। खाना कैसे खाना वो भी बाबा बताते हैं कि देवताओं मिसल भोजन करते हो, डिवाइन तरीके से हमें जीना है। तो हम सबको तो इस समय जो 8 मास उस समय हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला, हम बच्चों को भी पावरफुल बनने का मौका मिला, क्योंकि टाइम ही टाइम था फिर भी योग हुआ। हाँ, टाइम ही टाइम था ना, हम चाहे 2-3-4 घंटा योग कर सकते थे, किस किस ने किया बताओ, हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा। दूसरा, योग करने का बहुत टाइम मिला पर योग लगा, योग लगा, उसमें भी अपने आप को महसूस तो किया ना कि देखो टाइम ही टाइम है, योग कर रहे हैं पर एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहे। योग में तो बैठे, चलो 4 घंटा बैठे, अच्छी बात है, पर एकाग्र कहां तक हो पाए, बुद्धि का भटकाव कितना रहा। तो अपने आप से ही हम सबने प्रश्न किया होगा कि क्यों मैं एकाग्र नहीं हो रही, जबकि सत्य जान लिया कि और किसी की याद में कोई फायदा नहीं है, एक बाबा की याद में ही सब प्राप्ति है। जो इंसान जीवन में चाहता है कि शांति हो, सुख हो, आनंद हो, आपस में प्यार हो, मेल मिलाप हो, हर कोई अपने जीवन में वही चाहता है ना, वो तो बाबा की याद से ही मिलना है। सच्चा प्यार, रूहानी प्यार, निस्वार्थ प्यार तो दुनिया में होता ही नहीं है। तो जिस ज्ञान योग में हम चल रहे हैं और उसका लक्ष्य है कि एक बाबा की याद में सदा मगन रहना, वो चीज क्यों नहीं हो रही, अपने आप से पूछना। तो अपने वैराग्य को इतना गहरा बनाना है, क्यों हम लगन में मगन नहीं हो पाते, क्यों हमें योग में बैठते हैं नींद आती है, बुद्धि भटकती है, माथा भारी होता है, क्यों? हमें तो योग में आनंद आना चाहिए, मन करे बार बार सबसे अलग होकर साइलेंस में बैठकर एक बाबा से बातें करें, रूरिहान करें। ठीक है, निमित्त गृहस्थी के जो हमारा रोल है, जो जरूरी है, वो कार्य हमें करना है, वो कारोबार हमें करना है, पर हमें उसमें ही फंसे नहीं रहना है। हमने तो अपने सर्व संबंध किससे जोड़े हैं? आवाज से बोलो, लगे कि सच्चा है। एक बाबा से हम सब ने भक्ति में तो वायदे किए थे, पर भगवान जब आए तब भी हमने निर्णय कर लिया है कि हमारे सर्व संबंध बस एक बाबा से। तो हर क्षण, हर समय, हर बात में, हर परिस्थिति में, हर कार्य में सबसे पहले मुझे किसको याद करना है? बाबा को याद करना है। सबसे जब कुछ होता है तो हम कनेक्टेड लोगों से बात करते हैं ना, देखो मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, पापा आज ऐसा ऐसा, अब हमारे सामने ये मुसीबत आई। हाँ, जिससे भी हम कनेक्टेड हैं हम उनको कहते हैं ना। तो हमें किसको कहना चाहिए मन की बात? बाबा को बतानी, हमें बाबा याद आना चाहिए। और सर्व संबंध बाबा से जोड़ना माना क्या? हर संबंध वफादारी से प्रैक्टिकल निभाना, उसको कहते हैं संबंध जोड़ना। बाबा मेरा बाबा है तो मुझे पिता के साथ रिस्पेक्ट से चलना है, उनकी हर आज्ञा को मानना है, उनको हर बात बतानी है, क्योंकि पिता का रिलेशन तो बहुत बड़ा है ना। वो हमारे जिम्मेवार होते हैं, हमारे शुभ चिंतक होते हैं, है ना, इसलिए वो हमें सब कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, कभी डांट झपटते हैं, किस लिए? हमारे कल्याण के लिए। तो बाबा के साथ, बाबा मेरा पिता है तो मुझे बाबा के लिए रिस्पेक्ट, उनकी हर शिक्षा आज्ञा को मैं मानूं प्रैक्टिकल, और उनकी आशा अनुसार योग्य बनो, है ना। बच्चे माँ बाप को क्यों चाहिए? कि वो हमारी हर आज्ञा को माने, हमारे मददगार बने। हम उनकी सेवा करें, संभाल करें, तो कहेंगे कि मैं बेटा हूं और ये मेरे पिता के साथ मैं प्रैक्टिकल में संबंध में। मम्मी पापा कहे और माने कुछ नहीं, संभाल ना करे, माँ बाप को मदद ना करे, तो उनको आप बच्चा समझेंगे? कहते हैं ना, ऐसा तो ना हो तो अच्छा है, ऐसे तो मुए भले, ऐसे कहते हैं ना। तो देखो, बाबा से मैंने अगर पिता का संबंध जोड़ा है तो वो प्रैक्टिकल है कि सिर्फ बोलने तक है? हाँ, तो बाबा याद आते ही, है ना, बाबा भी हमारे मददगार बनेंगे। मुरली में आता है ना, कपूत और सपूत, सगे और लगे, बच्चे तो सब है पर बाबा कहते हैं ना, दिल की दुआ, प्यार, आशीर्वाद कौन से बच्चों के लिए ज्यादा निकले? सच्चे बच्चे के लिए, है ना, सपूत बच्चे के लिए। ठीक है भाई, बच्चा है तो फेंक तो नहीं देंगे, निकाल तो नहीं देंगे, पालेंगे, चलाएंगे, पर दुआएं तो नहीं मिलेगी ना। चलो वो श्राप नहीं देंगे, पर दुआएं भी तो नहीं मिलेगी ना। तो बाबा के साथ जो हमारे संबंध है वो हवा में नहीं है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि अभी भगवान आए हैं और हम उनके बच्चे बने। भाई बच्चा कमाएगा तो माँ बाप को भी देगा ना, और खुद भी, माना फिर उसकी जिम्मेवारी है ना, कि ऐसे नहीं केवल खुद खा पी के मौज फैशन करके पैसे खत्म कर दे और माँ बाप का ध्यान न दे, ऐसा भी तो नहीं करना है। शिक्षक है तो वो जो पढ़ाते हैं उसमें अटेंशन चाहिए। अब देखो मुरली में आपका अटेंशन है, जो निमित्त आत्मा बाबा के तरफ से टीचर बनकर मुरली हमें सुनाती है, तो हमारा अटेंशन उस निमित्त टीचर के प्रति हो। टीचर यहाँ पढ़ाती हो और आप ऐसे करके बैठो, ऐसे करके बैठो, तो ठीक कहेंगे उसको? हाँ, हमारा ये तो साइंटिफिकली भी है कि हमारा उधर अटेंशन होना चाहिए और बुद्धि में बाबा याद हो और बाबा के महावाक्य हम सुने। टीचर का नाम रोशन करे, वो अच्छी पढ़ाई से ही तो करेंगे ना, उन शिक्षाओं को याद रखेंगे, धारण करेंगे, उससे ही आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। उसकी नॉलेज में निश्चय हो, विश्वास, टाइम पास करने की बात नहीं है। मुरली में कोई इधर देखता उधर देखता उबासी देता, कोई बाजू में बैठे हुओं से बात करता, आजकल तो मोबाइल में लगे रहते हैं मुरली के टाइम भी, और खुद नहीं मोबाइल से कुछ किसी को लिखेंगे भेजेंगे, वो फिर उनको कोई मैसेज, चालू क्लास में ये सब करते है ना, तो ये तो लायक गॉडली स्टूडेंट है ही नहीं। तो अपने आप को देखो कि हमने, हम सच में सुप्रीम टीचर के क्वालिटी स्पेशल स्टूडेंट बन के चल रहे हैं। आज की मुरली में जो बाबा ने कहा वो आज धारण करना ही है, रोज का रोज धारण करेंगे तो अवस्था बनेगी। अगर आपने उनको सतगुरु बनाया है, अभी भी 4-5 दिन पहले मुरली में आया था ना, कि अगर समझते हैं कि सतगुरु एक है तो अपने को गुरु कभी नहीं कहलाते। वाह गुरु वाह कहते हैं, सतगुरु की कमाल कहते हैं, और फिर अपने आप को भी गुरु क्यों कहलाते रहते हैं, जब गुरु एक ही सत्य है परमात्मा, बाबा ने कहा था ना मुरली में। तो अगर बाबा को अपना सतगुरु बनाया है तो गुरु की तो कभी अवज्ञा करनी नहीं होती ना, गुरु के साथ तो कितना डिसिप्लिन से चलते हैं। तो बाबा के गुरु और फॉलोअर्स होते हैं ना, तो हम फॉलोअर्स हैं, ये अपने आप में देखना है। आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा बताया ना, कि साकार में ब्रह्मा बाप को कर्म में और सेवा में दोनों में फॉलो करना है। ब्रह्मा को भी तो कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा, और अब तो हमें पता चल गया ना कि सतगुरु का नंबर वन फॉलोअर ब्रह्मा बाबा है, तो हमें प्रैक्टिकल उनको फॉलो करना है, क्योंकि वो तो गृहस्थी थे और इतने तपस्वी बने। तो आप गृहस्थी भाई बहनों के लिए तो बाबा एग्जाम्पल है ना, आदर्श है। ऐसा नहीं क्लास में आए, ज्ञान सुना और गए बस। ऐसा सारा दिन फंस गए कि बस वो डायरी उठा के दूसरे दिन लाते। उस दिन एक दो बार भी खोल के पढ़ते नहीं, रिवाइज नहीं करते। बाबा हमारा साजन है, पति है। बाबा कहते हैं ना माशुक है, वो हमारा मालिक है, हमारा नाथ धनी है। इसलिए कहते हैं ना नाथों का नाथ, पतियों का पति, गुरुओं का गुरु, है ना। तो बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा जीवन साथी है, बाबा मेरा जीवन सारथी है। दिल की हर बात बाबा से। हर परिस्थिति में बाबा पहले आता है। तो बाबा को अगर हमने अपना साथी, जीवन सारथी भी बनाया है, आप तो अनुभवी हैं जो शादी किए हुए माताएं अधर कुमार है। इसमें कुमारियां कितनी हैं, हाथ ऊपर करो। अच्छा, तो बाबा के हैंड्स तो बहुत बैठे हैं किरण में। और कहां से आए हैं, खरगोन है सिर्फ। अच्छा, दिल्ली से आए। और हाँ, कितने हैं हिम्मत नगर के? 17। हाथ ऊपर करो हिम्मत नगर वाले। अच्छा, और दिल्ली वाले, इंदौर वाले। अच्छा, कटनी वही ना। अच्छा, कटनी, खरगोन, टोटल खरगोन। बहुत अच्छा, गुड। और कोई बाकी रह गए स्थान के? हैं, आगरा। कौन कौन है? अच्छा, हाँ पीछे भी है। बहुत अच्छा। तो अनुभवी जो हैं गृहस्थी भाई बहने, अभी तो ट्रस्टी बन गए ना आप लोग। गृहस्थी नहीं ना, हाँ ट्रस्टी हैं। तो जब अनुभव है ना कि लौकिक में भी शादी करते हैं, साथी बनते हैं, तो क्या लक्ष्य रखते हैं? एक दो के साथ मैचिंग हो, मिलके चलना है ना, तभी संबंध निभते हैं, है ना। हमें एक दो को अंडरस्टैंड करना होता है, एक दो को एक्सेप्ट करना होता है कि जो है जैसे हैं, स्वीकार करेंगे तभी तो एडजस्ट करके चल सकते हैं ना। बाकी अलग अलग परिवार के, अलग अलग स्वभाव संस्कार के व्यक्ति शादी करके साथी बनते हैं तो अंतर तो होता है स्वभाव संस्कार में, खान पान में, सब में, पहरवेश में, दिनचर्या में, पर एडजस्ट करना होता है ना। बाबा से तो एडजस्टमेंट की कोई बात ही नहीं। बाबा तो बहुत अच्छा है, प्यार का सागर है, सुखदाता है, कल्याणकारी है, वो तो सुप्रीम है। हम वैरायटी है, हमारे स्वभाव संस्कार अलग अलग है। बाबा कहते हैं ना नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है, पर बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया। कौन से शब्द बाबा ने कहे हैं, याद है? हाँ, तुम जो हैं, जैसे हैं, मेरे हैं, भगवान ने हमें एक्सेप्ट किया। बोलो, इतना डिफरेंस तो दुनिया में कोई कपल के बीच नहीं होगा। कहाँ बाबा और कहाँ हम तो एक पर पट पर गिरे हुए। कहाँ बाबा टॉप पर, और भगवान ने हमें स्वीकार किया। तो हमारा फर्ज क्या है? अगर हम साथी हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि हम भी बाबा जैसे बनते जाएं। वो सच्चा प्यार। चलो भाई, ये बाबा की महानता है कि मैं जो हूं, जैसी हूं, बाबा ने मुझे प्यार से स्वीकार किया। पर मेरा ये लक्ष्य हो कि बाबा अब आप जैसा चाहें ऐसी मैं बनती जाऊंगी, ऐसी मैं बनती जाऊंगी। मेरे में अनेक अवगुण हैं, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, पर बाबा अब मैं आपकी बनी हूं और आपने मुझे स्वीकार किया है, तो मैं अब जैसा आप चाहे ऐसी बनती जाऊंगी। इसको कहेंगे बाबा को साथी बना। देहधारी साथियों में भी है ना, लक्ष्य रखते हैं ना कि भाई उनको जो पसंद आवे वो हम करेंगे। सुनते हैं ना गीत दुनिया में, तुम को जो पसंद हो वही बात करेंगे। तो हम बाबा के साथ ऐसा करते हैं, बोलते हैं तो याद रखो कि बाबा जो आपको पसंद हो ऐसा ही मैं बोलूंगी, और मेरे कोई अपशब्द, कड़वे शब्द, अपमान करने वाले, दुख देने वाले शब्द मैं नहीं बोलूंगी। तभी तो आपस में राजी और खुशी रहेगी। जो आपको पसंद है वही खाना बनाएंगे। करते हैं ना ऐसा, मेरे बेटे को ये सब्जी नहीं पसंद है, तो बेटे जैसी भी बनाएंगे, पति जैसी भी बनाएंगे, बड़ों जैसी। कितना माताएं घर में एडजस्ट करके करती, भाई पति को, फिर जो आपके माता पिता, सास ससुर, कितना माताएं सबको देख के फिर बनाती खाती है वही। तो हमें भी जो बाबा ने नियम मर्यादाएं सिखाई हैं ऐसा ही खाना खाना है, सीखना है। ऐसे नहीं मेरे को इसके बिगर चलेगा ही नहीं। खान पान में व्यसन भी आ जाते हैं, व्यसन भी आ जाते हैं, इसलिए मुझे भाई उनको पसंद नहीं है वो नहीं खाना है। भाई उनको पसंद नहीं है, हम उनके घर जाएं, उनसे बोलें, उनके साथ खड़े होके बातचीत करें, वो हमारे घर वाले को पसंद नहीं है तो नहीं करते भाई। ऐसी पहरवेश वो कहता है नहीं पहनना है तो हम नहीं पहनते हैं। ऐसे आपस में एक दो को जो पसंद हो वो ही करते। तो हमें भी ऐसे ही नियम मर्यादा वाले कपड़े पहनने हैं, और बाबा का तो हुक्म है ना, देह सहित, क्या हुक्म है, सर्व देह के सर्व संबंधों को भूलो। तो उनसे ज्यादा संबंध बनाने की बात ही नहीं है, देहधारियों से बातें करना, ज्यादा कांटेक्ट में आना, वो देह अभिमान बढ़ाता है, वो हमारे कल्याण की ही बातें। तो हमें न्यारा और प्यारा रहना है, न फंसना है कोई देहधारी में, लौकिक में, और ना हमें लड़ना है, हमें तो न्यारा और प्यारा बनना है। बाबा बहुत अच्छा कहते हैं कि ना संबंधों को तोड़ना है, ऐसे नहीं हम ज्ञान में चलते हैं ये तो अलग है अज्ञान, ऐसे करके संबंधों को तोड़ना नहीं है, क्योंकि रहना तो दुनिया में है ना, को तो बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल रिलेशन में नहीं जाना है, हमें तो तोड़ निभाना है, बस कमल फूल समान उसमें रहना है, फंसना नहीं। तो कहेंगे कि बाबा को साथी बनाया, बाकी बाबा भी और बेटा भी पोतरा भी दुनिया भी समाज भी, तो वो क्या संबंध जोड़ा। बाबा से प्यार है माना बाबा के परिवार से भी प्यार। मुरली में सॉन्ग आता है ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो कांटों से घृणा नहीं करनी, समझना है। बाबा कहते हैं ना, सबके स्वभाव संस्कार रोल को समझकर अपना व्यवहार करो, अपने को सेफ रखो। उनको हमारी वैल्यू नहीं है तो हमें उनके पीछे बहुत पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, हम उनको अपमानित भी ना करें। पर संबंध तो निभाना है ना, रूठना नहीं है। अलौकिक परिवार प्रैक्टिकल संगम युग का बाबा का परिवार है, तो हमें लड़ना झगड़ना नहीं। हमारी निमित्त बहने हैं और भाई बहने अलौकिक परिवार के हैं, हम अलौकिक परिवार वालों को तो आपस में कैसे चलना है, क्षीर खंड होकर, लून पानी नहीं बनना है, है ना। लून पानी बनते हैं फिर एक दो को दुख देते रहते हैं, वो तो 100 गुना हिसाब बन जाता है। तो अगर बाबा को साथी बनाया है तो बाबा सारे विश्व की आत्माओं को प्यार करते हैं, उनका शुभ सोचते हैं, रहम दिल बनते हैं। तो हमें भी बाबा को ही फॉलो करना है। इससे मैं नहीं कहती हूं कि हमें दबना है, मरना है, नहीं। मैंने बताया ना, हमें अपने आप को सेफ रखते हुए कि हम दुखी ना हो, वो हमारा अपमान करे और हम सहते रहे, नहीं, हम न्यारे रहे, हमारे मन में अशुभ ना आए। इस अर्थ में कितना परसेंटेज में बाबा को साथी बनाए और बनाना है, है ना। देखो इस परिस्थिति में कौन हमारी मदद में रहा, है ना। हमने अपने मन को कैसे ठीक रखा, बाबा को याद कर करके, बाबा के ज्ञान की पढ़ाई कर करके, और इतने सालों से जो बाबा ने हमें मेंटली प्रिपेयर्ड किया वही तो काम में आया ना। अचानक ये परिस्थिति आई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, पर उस समय हम घबराए नहीं, चिंतित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए, टेंस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बहुत सालों से बाबा ने हमें बताया और मेंटली प्रिपेयर किया। ऐसी कोई मुरली नहीं जिसमें विनाश की बात बाबा ने न कही, क्योंकि टाइम फैक्टर हमारे लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए बार बार कहना ही पड़े। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें याद है, हम ज्ञान से पहले दादा के घर जाते थे तो जिस दिन हमें निकलना होता था तो 2 घंटे पहले से दादा कहेंगे जाओ निकलो जल्दी अब तैयार। कोई तो सोचेगा कि दादा होके ऐसे क्यों कहता है पर ये हमारे बड़ों में थी, ये चीजें टाइम की कदर थी और अवेयरनेस थी। तो बाबा हमें आदि से जब से यज्ञ स्थापन हुआ, दादियों को बाबा ने क्या कहा था कि तुम अगली दीपावली भी नहीं देखेंगे और दादियों ने 84 दीपावलियां देखी दादियां भी कभी शंका नहीं की कि बाबा ने तो ऐसे, बाबा टाइम सिग्नल देता रहा, विनाश की बातें रोज सुनाता रहा। तो देखो आज हम मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से तैयार रहे, जो हमें सबके मन में उस समय क्या आया कि भाई हमारे बाबा ने कहा ही था कि ऐसा ऐसा होगा, है ना। हमारे बाबा ने तो हमें बहुत सालों से ये बातें कही है, इसलिए आप भी शांत रहो, उनको याद करो, चिंता ना करो, घबराओ नहीं। तो बाबा का शुक्रिया माना आप सबने इस बात का। हाँ हाँ, और ही बाबा के हम बच्चे ऐसा सोचते थे जब बाबा विनाश की बातें करते, सोचते थे कुछ होता तो है नहीं 76 में भी बाबा ने कहा था नहीं हुआ, 2000 में तो सबको था कि अब चक्र पूरा हो गया फिर कहने लगे नहीं हुआ। अभी तो इतना वर्ष लगेगा, अभी तो इतना वर्षों के बाद सतयुग आएगा, हर एक अपने मन का ही लगाते रहते थे अनुमान। कभी भगवान ने कोई वर्ष नहीं बताया तो मनुष्य कैसे बता सकता। ये निश्चय हो तो आप कभी की ऐसी बातों से मिसगाइड नहीं होंगे। विनाश जरूर होना ही है, बाबा सदा ऐसे कहते, वो अपने आप अपने टाइम पर हो जाएगा ना। हम तो स्थापना करने वाले लोग हैं, हमें तो स्थापना का काम करने में लगना है ना, कि विनाश की राह देखनी। हमारा तो कोई विनाश से संबंध ही नहीं है, विनाश का काम तो प्रकृति करेगी, हमारा काम तो स्थापना का है। हमें तो उसमें पूरा समय, मन, बुद्धि, धन साधन जो भी लगाना है वो तो स्थापना के कार्य में लगाना है। तो लास्ट एक बात मैं बता रही हूं कि अब हम स्पष्ट समझ लें, स्वीकार कर लें, निश्चय बुद्धि बन जाएं कि बाबा ही हमारा सच्चा अपना निष्काम सुखदाता ऐसा साथी, बाबा से ही सर्व प्राप्तियां हैं, ये बुद्धि में स्वीकार कर ले। देखो परिस्थितियां आती है तो हम सबको, या दुनिया में अज्ञानी है उन सबको भी उस समय कौन याद आता है, भगवान ही याद आता है। तो जिसको सारी दुनिया कहती है बेसहारों का सहारा, वो हमें सर्व संबंध से स्वीकार कर लिए हैं तो हमें उनको ही, हमें उनका भी सच्चा पक्का साथी बन के चलना। अभी ही मुरली आई थी ना माशुक और रूहानी आशिक की, उसमें सब है, फिर से पढ़ना, उनको फिर से पढ़ना, वो धारणाएं हमारे में। और बाकी सब से साक्षी बनना है। साक्षी होके जो भी है वो जैसे भी हैं, मन वचन कर्म से उनकी वाणी को, व्यवहार को, उनकी भावनाओं को, वृत्तियों को साक्षी होके देखो, डिटैच होके देखो, है ना। डिटैच होके भी आप वहां से देखेंगे तो भाई यहाँ क्या है, कैसा है, वो सब मिलता है ना। अब मैं इसमें मिल गई तो मुझे नहीं दिखता है भाई अभी कि ये सब क्या है। तो जब हम अटैच होते हैं तो राइट परख नहीं सकते। जब हम डिटैच होकर देखेंगे तो हमें हर परिस्थिति का सही विश्लेषण होगा कि ये क्यों, क्या है, कैसा है, क्यों हुआ है और अब क्या करना चाहिए, ये सब समझ में आता है। इसलिए व्यक्तियों और परिस्थितियों से साक्षी होके बनना है और शुभ भावना से मदद करनी है। और शरीरी जितना आप बनेंगे, जितना आत्मभिमानी बनेंगे, उतना हम साक्षी बन सके। त्रिकालदर्शी और साक्षीपन की सीट पर बैठकर आप ऑब्जर्व करेंगे तो राइट अंडरस्टैंड होगा, डिसीजन ले सकेंगे और फिर आप फर्मली आगे बढ़ सकेंगे। तो अभी हम अभ्यास करते हैं साथीपन और साक्षीपन का। समझ में आ गया सबको? कोई क्वेश्चन है? टॉपिक क्लियर हुआ? ओके, फाइन। तो 2 मिनट खड़े हो जाइए और हाथ पांव कमर सब ठीक कर लीजिए। एक्सरसाइज तो आप सब जानते ही हैं, तो अपने आप करो कि माताओं ने एक्सरसाइज की आपने नहीं की तो फिर मैं कराऊंगी। 3 अभ्यास हम खड़े खड़े करेंगे और 2 अभ्यास फिर बैठ के आप करेंगे बाबा की याद में। लाल लाइट करें, लाल लाइट। अब स्व में स्थित हो जाइए। शरीर से डिटैच और स्वयं के आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। पहला अभ्यास स्व में, जैसे ही हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, देह भान से न्यारे हो जाते हैं। जब हम देह से न्यारे आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं, ऑटोमेटिक ड्रामा के हर सीन से साक्षी हो जाते हैं। हम परिस्थितियों को साक्षी बनकर निरीक्षण कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, परिस्थितियों से पार होने का सही मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। मैं शरीर से अलग, धीरे से राइट साइड घूम जाइए, राइट साइड घूम जाइए, जब से मैंने बाबा से सर्व संबंध जोड़े हैं, मैं सर्व देह संबंधों से अनासक्त बन जाता। इस जन्म में जो भी देह संबंध है, मैं अनासक्त होकर उनसे संबंध निभाती हूँ। परासक्त नहीं होती, मेरी सर्व प्राप्तियां, मेरे सर्व संबंध प्यारे बाबा से है। मैं नष्टो मोहा बनती जाती हूँ, बाबा से साथीपन निभाते हुए कंबाइंड होती जाती हूँ। बाबा मेरा साथी है, मैं आत्मा उनकी जीवन सारथी हूँ। मैं देह संबंधों से उनके प्रभाव, लगाव, झुकाव से निकल चुकी हूँ। वापस बाबा के सामने हो जाए, अब लेफ्ट साइड घूम जाएं, रोज बार बार इस देह की दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार परम धाम में जाने का मूल वतनवासी बनने का अभ्यास करती हूँ। मैं इस पुरानी दुनिया से पार हो जाती हूँ। मेरा असली घर निज धाम परम धाम मैं अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व की निवास भल में शरीर से इस दुनिया में रहती हूँ। मन की आंख से उस पवित्र वतन की निवासी बनती हूँ। अब वापस घर जाना है। मैं इस दुनिया में होते हुए दुनिया से न्यारी कमल फूल मैं लौकिक अलौकिक न्यारी प्यारी मैं इस शरीर में इसलिए हूं कि मैं बाबा को याद कर सकूं। मैं इस दुनिया में गृहस्थी में संसार में इसलिए हूं कि मैं सेवा कर सकूं। बाबा के सामने हो जाए बैठ जाए मैं चौथा अभ्यास मैं इस अलौकिक परिवार में मुझे इस अलौकिक परिवार में भी कमल फूल रहना है। मुझे सेवा से अलौकिक परिवार से न्यारा और प्यारा रहना है। मैं फरिश्ता हूं, हमें बाबा ने आपस में मिलाया है, परिवार बनाया है, अलौकिक संगठन बनाया है। इसलिए कि हम आपस में मिलकर ऐसा पुरुषार्थ करें जो बाप समान बन जाए, हमें बाबा ने इसलिए मिलाया है, हम मिलजुल के चलें, हमें आपस में न्यारा और प्यारा रहना है। हमें आपस में लौकिक नहीं बन जाना है, हमें अलौकिक ही रहना है। हमें आपस में साधारण नहीं बन जाना है, अनासक्त कर्मयोगी, अनासक्त सेवाधारी बन। और पांचवा अभ्यास, मुझे वापस घर जाना है। अकेले आए हैं, बाबा के साथ जाना है। निश्चिंत निर्भय होकर बाबा के साथ जाना है। खाली हाथ आए थे, भरपूर होकर जाना है। अपने प्रियतम बाबा के साथ जाना है। पवित्र आए थे,